दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
एरिक भाई, ओम शांति कला बहन, दृष्टि से सृष्टि इस सुंदर सीरीज में जहां हम भविष्य की सती हुई दुनिया को देखेंगे, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें खुशी है कि आप संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के बीच में पधारे हैं। कला बहन, ओम शांति, शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी है जो आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। एरिक भाई, मुझे भी गर्व है कि आपको खुशी है जो आप हमारे साथ हैं। सतयुग में भी हमें साथ रहना है। ये एक जैसे यात्रा है जो अभी से प्रारंभ हो चुकी है। सतयुग में हमारी फीलिंग्स, हमारी इमेजेस, वो स्मृतियाँ कैसी होंगी, इसके बारे में हम आपसे सुनेंगे। तो शुरुआत में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सतयुग ये शब्द सुनकर आपके मन, बुद्धि और दिल में क्या महसूस होता है? कला बहन, मुझे लगता है कि भिन्न भिन्न समय पर हमारी फीलिंग्स, इमेजेस और स्मृतियाँ भी भिन्न भिन्न होंगी। मुझे याद है ब्राह्मण जीवन की शुरुआत में सतयुग का दृश्य जब मेरे सामने आता था तो मुझे देवी देवताओं की मूर्ति दिखाई पड़ती थी, विशेषकर श्री कृष्ण की प्रतिमा मेरे सामने आती थी। फिर जैसे जैसे मैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती गई, तो मुझे सतयुग की भिन्न भिन्न बातें समझ में आने लगी। अभी कुछ समय से मुझे स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है, विशेषकर मन की स्वतंत्रता का। ऐसी स्वतंत्रता जब मन एक उड़ते पंछी की तरह अनुभव होता है, न केवल मैं उस हल्केपन का अनुभव करती बल्कि मेरे आसपास भी जो लोग होते हैं उस हल्केपन को वो महसूस करते हैं। इससे मुझे एक बहुत सुंदर हल्केपन की व खुशनुमा परिवार की फीलिंग आती है। एरिक भाई, आप उस हल्केपन की फीलिंग को व सतयुग की स्मृति को थोड़ा और समझाएंगे? इस संसार में हम स्वतंत्रता की फीलिंग को बहुत अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। सतयुग में तो न जेल होगा, न वकील होंगे, न जज होंगे, न कोई मन का बंधन होगा, तो वहाँ हम कैसे उस स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे? क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हंसते हुए कला बहन ने कहा, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है। कुछ समय पहले की बात है, जब एक छोटे बच्चे को मैंने नाश्ता करते हुए देखा। शायद वो बच्चा स्पगेटी खा रहा था, कोई 4-5 बरस का बच्चा होगा। वो बड़े मजे से एक एक स्पगेटी के धागे को स्वाद ले लेकर के खा रहा था। उसे ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वो बच्चा बहुत ही मजा ले रहा था और ऐसे खा रहा था जैसे और कोई भी उतने मजे से नहीं खा सकता। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि ऐसे ही हम सतयुग में वर्तमान में जिएंगे और हर सेकंड का स्वतंत्रता पूर्वक आनंद लेंगे, चाहे वो भोजन का समय हो, चाहे वो किसी के सामने हम बैठे हों। उस बच्चे की इमेज ने मुझे सतयुग की याद दिला दी। उसके मन में जैसे कि और कुछ था ही नहीं, हम सब उसके आसपास थे, उसकी महिमा भी कर रहे थे, उससे बात भी कर रहे थे, लेकिन वह तो जैसे नूडल्स खाने में पूरी तरह से खोया हुआ था। मेरे लिए उस सतयुग के समय की जैसे कि छोटी सी झलक थी। मुझे पता नहीं कि उस बच्चे को ऐसा अनुभव हो रहा था या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि वो सतयुग के समय का एक बहुत बढ़िया नजारा था। वो एक ऐसा समय होगा जहां हम वर्तमान का पूर्ण तरीके से आनंद लेंगे, साथ साथ प्रकृति से, लोगों से व स्वयं से हमें प्राप्ति का अनुभव होगा। वह हमें जीवन को अच्छी तरह से जीने की स्वतंत्रता होगी। एरिक भाई, ऐसा भी हो सकता है जो सतयुग में हमें गोल्डन स्पगेटी मिले। कलाबैन, यहाँ कोई स्थूल चीज की बात नहीं, लेकिन हर पल को आनंद पूर्वक जीने की बात है। एरिक भाई, एक प्रश्न है आपके लिए। जैसे पहले आपने सतयुगी स्वतंत्रता की फीलिंग की बात कही और कृष्ण की तरफ आपके आकर्षण की बात सुनाई, तो क्या ज्ञान में आने के पहले आपने बहुत भक्ति की थी या हिंदू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया था? कलाबेन, हाँ, मैंने भक्ति तो की थी, लेकिन उतनी गहरी नहीं, जैसे कि शास्त्र पढ़ना या सतयुग के बारे में जानना, ये नहीं किया। सतयुगी कृष्ण की मूर्ति के प्रति मेरा बहुत लगाव था, तो जब मुझे ये समझ में आया कि श्री कृष्ण कौन है, तो जैसे मेरी सोच बदल गई, मेरी भावनाओं में बदलाव आया। जिस मूर्ति की मैं पूजा करती थी और जिससे मेरा बहुत प्यार था, ज्ञान मिलने के बाद मैं उसके बहुत नजदीक आ गई, मैं उसके बहुत बहुत करीब आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर एक आशा जग गई कि मैं उसके साथ का अनुभव कर सकती हूँ, उसके समान बन सकती हूँ और उसके साथ सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा अनुभव मुझे धीरे धीरे हुआ, एकदम से नहीं हुआ, कुछ महीने व कुछ वर्ष लग गए, और मेरे अंदर एक बहुत सुंदर परिवर्तन हुआ। मेरी अंधश्रद्धा की भावना एक दिव्य पवित्र भावना में बदल गई। तो मेरे विचार में ये सिर्फ सतयुग की बात नहीं, लेकिन उन देवी देवताओं की बात है जो सतयुग में रहते थे। सिर्फ कुछ दिव्य आत्माओं की बात नहीं, बल्कि ऐसा संभव है कि मैं भी उस देवी घराने में आ सकती हूँ। इस समझ से मेरे अंदर एक बहुत सुंदर परिवर्तन आया। एरिक भाई, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। मेरे विचार से इसका संबंध इससे भी है कि आप कैसे सतयुग के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। जैसे बाबा भी कहते हैं कि स्वर्ग में हमें ऊंच पद लेना है, और ऊंच पद पाने वालों को न केवल महल व ताज मिलेंगे, परंतु उनमें पवित्रता, प्रेम आदि आदि ये सारे दैवी गुण होंगे। तो आपने कैसे ये सारे गुणों को, जो बाबा हमें अपना भविष्य का स्वरूप याद दिलाते हैं, आपने कैसे अपने ब्राह्मण जीवन में इन गुणों को सम्मिलित किया है? कलाबेन, एक की शब्द जिससे मुझे पुरुषार्थ में बहुत मदद मिली है और मुझे बहुत श्रेष्ठ अनुभव भी हुए हैं, वो शब्द है सोला कला। जब मैं बाबा से पहली बार मिली, तो बाबा ने मुझे इसी शब्द से पुकारा, सोला कला, न कि सिर्फ कला। तो उस समय इस शब्द ने मेरी, जैसे कि मेरी अंतरात्मा में प्रवेश कर लिया। मेरे लिए ये चंद्रमा का संपूर्ण स्वरूप जैसे कि मेरे दिल पर छप सा गया, और मुझे लगा कि मुझे ऐसा ही संपूर्ण बनना है। तो मेरे ब्राह्मण जीवन में इस शब्द सोला कला से हमेशा मेरी अवस्था को ऊपर उठाने में मदद मिली है। मेरा संपूर्ण स्वरूप जो बाबा उस समय देख रहे थे, वह जैसे कि मेरे लिए प्रत्यक्ष हो गया। तब से मैंने इस शब्द सोला कला संपूर्ण को अच्छे से पकड़ कर रखा हुआ है। इस नाम का मेरे लिए बहुत महत्व है।
And I've always held on to those words, solar color. This is 16 celestial degrees. So I think it was pretty remarkable. I don't know if my name was not that if I would have, could have existed so long, but I think the name had a lot to do for me. And of course,
Eric bhai, मुझे लगता है ये आपको बहुत सुंदर वरदान मिला है. तो आप ये 16 कला संपूर्ण इस स्वरूप को कैसे समझाएंगे? आप कौन से शब्दों में इसे विस्तार से बता सकेंगे? इस 16 कला संपन्न स्वरूप में स्थित होने से हमारे अंदर कौन से लक्षण होंगे? हमारे मन की स्थिति कैसी होगी? हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी? कला बहन, मैं समझती हूँ इस स्वरूप में स्थित होने से मुझे जिस समय जिस भी चीज की जरूरत होगी वो चीज इमर्ज हो जाएगी. मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी. मुझे सदा भरपूरता की फीलिंग होगी. उदाहरण के लिए, अगर किसी समय किसी स्थान पर मेरी जरूरत है तो अपने आप ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी. दूसरे शब्दों में, मैं कुछ मिस नहीं करूंगी. तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे गुण सब मुझे पूरी तरह से ऐसा अनुभव कराने में सहयोग देंगे और जीवन में मुझे उस भरपूरता का अनुभव होगा. ऐसा भी नहीं कि मुझे सदा ही ऐसा अनुभव होता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव जरूर किए हैं. सही स्थान पर, सही समय पर, सही लोगों से मिलकर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करना, यही तो जीवन है और यही वह समय है. एरिक भाई, एक दिलचस्प बात यह है कि अगर हम किसी से भी सतयुग के बारे में पूछते हैं तो स्व के ऊपर अभी ध्यान देने की बात आती है. अभी हमारे क्या लक्षण हैं? बेशक हम सब सतयुग में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं. मेरा ये प्रश्न है कि क्या हम संपूर्ण ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या हम संपूर्ण देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? और क्या ये दोनों पुरुषार्थ एक जैसा है? क्या दोनों के लक्षण एक हैं? आपका क्या विचार है? कला बहन, इसके बारे में आज मैं भी चिंतन कर रही थी. अगर हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है व संपूर्ण निश्चय है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे रास्ते में आ जाती हैं? मैं सोच रही थी कि इस ब्राह्मण स्वरूप को स्वीकार करने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा ब्राह्मण स्वरूप बहुत विशाल और बहुत गहरा है. न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी बहुत सी बातें होती हैं, जैसे हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य, हमारी फीलिंग्स, हमारी दृष्टि. अगर इन सब बातों में कोई कमी रह जाती है तो हमारे पुरुषार्थ में भी कमी आ जाती है. जो अनुभव हम सतयुग में करेंगे वैसे अनुभव भी फिर हम यहाँ नहीं कर पाते. तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगी कि वर्तमान और भविष्य का संबंध जरूर है. मुझे लगता है कि हम स्वर्णिम युग को ज्यादा स्मृति में नहीं लाते हैं. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समय होता है जब हम अपने ब्राह्मण स्वरूप को भूल जाते हैं. हमें हमारा ब्राह्मण स्वरूप तो बहुत अच्छी तरह से याद रहता है, लेकिन हम अपने सतयुगी देवता स्वरूप को याद नहीं रख पाते. मुझे लगता है इस स्वरूप के ज्यादा अभ्यास की अब आवश्यकता है. इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, सीइंग इनटू बीइंग, जिसमें हम उन फीलिंग्स व अनुभवों को इमर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम वहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे. एरिक भाई, ये सत्य है कि रोजमर्रा में हम एक दूसरे को ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, साथ ही हम आत्मिक दृष्टि रखने का भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम एक दूसरे को दैवी आत्मा के रूप में देखने का ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करते। इस प्रैक्टिस की कमी लगती है। कला बहन, हाँ, मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ। हो सकता है ये सभी के लिए सत्य न भी हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं इतना इसका अभ्यास नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं ये अभ्यास करती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये जीवन अपने गुणों को इमर्ज करने के लिए ही तो है। जब भी हमें मौका मिले, हमें अपने ब्राह्मण स्वरूप को, अपनी जिम्मेवारियों को एक तरफ रखते हुए अपने सतयुगी देवताई स्वरूप को स्मृति में लाना चाहिए। हमें उस स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए, वर्तमान में खुशी खुशी जीकर उस पवित्र वातावरण का अनुभव करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सौगात है जो हम स्वयं को व दूसरों को दे सकते हैं। खासकर इस समय पर इस ब्राह्मण परिवार में जो काफी वर्षों से ज्ञान में है, वे ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति से ही बड़े हुए हैं। खासकर पश्चिमी देशों में जहाँ सतयुग की स्मृति व देवताई स्वरूप की स्मृति उतनी नहीं रहती, जैसे ही हम देवताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने देवताई पोशाक वो अन्य आकर्षक चीजें आने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है देवताओं के लक्षण की, दैवी गुणों की व पवित्रता की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ऐसे दैवी गुणों से फिर कोई रुकावट नहीं आती और सबकी ऊर्जा बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती रहती है। तो मुझे लगता है हमें ऐसे अवसर निकालने चाहिए जब हम ऐसी ऊर्जा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें एक प्राकृतिक तरीके से। एरिक भाई, तो हमें संबंध जोड़ने का क्या कोई नया तरीका निकालना होगा? जैसे आपने कहा, सतयुगी पोशाकें किसी किसी के लिए रुकावट बन सकती हैं। क्या हमें कोई अलग विधि निकालनी होगी? आपका क्या विचार है इस बारे में? कला बहन, ये सब दृश्यों से हमें थोड़ा बहुत फायदा तो मिलता ही है, लेकिन हम ऐसे दृश्य, ऐसे विजुअल्स पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। एरिक भाई, लेकिन हम इस बात की गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि बाबा बार बार हमें कहते हैं कि हमें स्वयं को कभी अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति दिलानी है, कभी अपने चैतन्य देवी देवता स्वरूप की, तो कभी पूज्य स्वरूप की, और कभी निराकारी स्वरूप को याद रखना है। ऐसी भिन्न भिन्न स्मृतियाँ हम सबको रखनी है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या दैवी स्वरूप की स्मृति का ज्यादा महत्व है? क्या एक बेहतर ब्राह्मण बनने के लिए ये स्मृति हमें रखना है, या फिर एक बेहतर देवता बनने के लिए हमें अच्छा ब्राह्मण बनकर दिखाना है? कला बहन, दोनों ही तरीके सही हैं, क्योंकि ये एक चक्र है। एरिक भाई, हाँ, एक के साथ दूसरा भी आ जाता है। तो आप कैसे इस विधि को अपने ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोग करते हैं? कला बहन, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं इतना ज्यादा इसका अभ्यास नहीं करती हूँ। मैं अच्छी ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करती हूँ, बाबा के साथ अच्छा संबंध रखने का, वह हर चीज को एक्यूरेट तरीके से करने का भी मेरा पुरुषार्थ रहता है। अगर मैं बैठकर अपने दैवी संस्कारों का चिंतन करूं, जो वास्तव में हमारे आदि संस्कार हैं, तो एक साथ सारे संस्कार इमर्ज नहीं होते, इसमें समय लगता है। एक एक करके ये गुण दिखाई पड़ते हैं, एक साथ सर्व गुणों का अनुभव नहीं हो पाता। मैं उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब सर्व गुणों का अनुभव मुझे एक साथ हो जाए। हमारे आदि स्वरूप को इमर्ज होने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छे पुरुषार्थी ब्राह्मण को ऐसी स्टेज पर पहुंचना ही है, और उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही है। ऐसा पुरुषार्थ जब ये आदि संस्कार उसके लिए नेचुरल बन जाए, तो समय समय पर मैं ऐसा पुरुषार्थ करती हूँ, विशेष मेडिटेशन भी करती हूँ, जिससे कि मेरे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो सके। इस पुरुषार्थ के द्वारा मैं स्वयं को बहुत बहुत शक्तिशाली महसूस करती हूँ, और ब्राह्मण मार्ग में जो क्लैरिटी आती है उसका अनुभव करती हूँ, और स्वयं को भी रेडी होते हुए अनुभव करती हूँ। कभी कभी अगर हम पूर्णतः शक्तिशाली नहीं होते या पवित्र स्थिति का अनुभव नहीं करते, तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है। एरिक भाई, कभी कभी कोई कोई बीके बाप दादा या सीनियर्स जैसे कि दादी कुमार का के अपने अनुभव बताते हैं जब उन्हें स्वर्णिम युग की जागृति हुई। क्या आपके ब्राह्मण जीवन में भी ऐसे क्षण की कोई स्मृति है जब आपको ऐसा लगा कि ये बात जैसे कि सतयुग के समय की याद दिलाती है? कलाबेन, मैं फिर से उसी क्षण को याद करूंगी जब बाबा से मैं पहली बार मिली थी। उस समय बाबा ने मुझे 16 कला के रूप में संबोधित किया, और मुझे वो बात रियल लगी। उसके पहले तक तो मुझे ये बात इतनी रियल नहीं लगती थी, तो वह क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कई बार बाबा से दृष्टि लेते मैंने उस संपूर्ण पवित्रता का, उस स्वतंत्रता का जो पवित्रता से आती है, उसका अनुभव किया है। रक्षाबंधन के समय पर भी मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं। एक राखी का खास अनुभव दादी कुमार का के साथ मुझे मधुबन में हुआ। वैसे तो राखी के समय हम ज्यादा समय साइलेंस में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बेशक पवित्रता तो रखते ही हैं, लेकिन उस वर्ष मधुबन में राखी के समय मैंने देखा कि चारों तरफ बहुत खुशी व भाईचारे का वातावरण था। सब लोग दादी को राखी बांध रहे थे और दादी भी सबको राखी बांध रही थी। एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से पवित्रता का प्रवाह हो रहा था, खुशी प्रवाहित हो रही थी, बहुत ही प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे थे। मैं सोचती हूँ कि ऐसा ही संबंध हमारा सतयुग में होगा। यहाँ बेशक हम ऐसा संबंध बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी सुंदर है, लेकिन सतयुग में तो जैसे कि संपूर्ण पवित्रता की धारा बहती रहेगी। एरिक भाई, क्या आप अपने सुंदर अनुभवों को मेडिटेशन कमेंट्री के रूप में हमारे सामने रखेंगे, ताकि सतयुगी फीलिंग्स और स्मृतियां हम भी उसका अनुभव कर सकें? कला बहन, जरूर।
चलिए
उस समय पर पहुंच जाएं, समय जो हमारे साथ है,
our best friend,
समय हमारा दोस्त है।
बाबा ने
हमें इस पक्के मित्र से मिलाया है। हम समय के साथ चल रहे हैं। जैसे एक पक्षी बड़ी सरलता से ऊंची उड़ान भरता है, हम सब भी उस सुनहरे व प्राचीन समय पर पहुंच चुके हैं। हम सब साथ हैं। हमारा पूरा झुंड जो संगम युग में साथ था, अब वह समय पूरा हो गया। अब हम स्वर्णिम युग में पहुंच गए हैं।
And what's the proof?
एक दूसरे के प्रति हमारी श्रेष्ठ भावनाएं हैं।
Absolutely. Uplifting of each other.
यहाँ कितनी खुशी है, ये कितना न खुशनुमा जीवन है। हर क्षण जैसे कि एक अवसर है, एक दूसरे के नैनों में देखकर उस प्यार को पाने का। कितना एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान है। यहाँ कोई स्थूल रूप से लेन देन नहीं है। लेकिन फिर भी कितना कुछ हम शेयर कर रहे हैं। प्रकृति भी हमारी प्रशंसा कर रही है।
Nature is applauding us.
वो हमें देखकर कितनी हर्षित हो रही है।
Just seeing us there.
कुछ न बोल कर भी वातावरण में कितनी खुशहाली है।
But it's all in the air.
सबकी स्मृतियां बहुत श्रेष्ठ और सुंदर हैं।
द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड प्योरेस्ट,
ये समय भी कितना श्रेष्ठ और सुंदर है।
एंड टाइम,
हम सबके दिल झूम रहे हैं, साथ साथ हमारे पग भी नाच रहे हैं और हमारा शरीर भी नृत्य कर रहा है। हमारे चेहरे और चलन से ही जैसे उस खुशी की वर्षा हो रही है, कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं। हम स्वर्णिम युग में हैं। ओम शांति। हरि भाई, ओम शांति। कलाबेन, अपने सुंदर व प्यारे विचार शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि आप 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और औरों को भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आपसे सर्व गुणों की चमक अभी से ही चारों तरफ फैल रही है। हम भी स्वर्णिम युग में जाने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कला बहन, ब्लेसिंग्स के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।